नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्य में मेजर मिनरल के 22 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बरसात हुई, कहीं कहीं ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025-2026 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की। कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे सरकारी आयोजनों में शामिल करना, चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित करने और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाने जैसे ने शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को श्री अन्न की पोषण क्षमता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकारी आयोजनों के साथ ही मिड डे मील और मां बाड़ी केंद्रों पर पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद शुरू किए जाने को कहा, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। उन्होंने श्री अन्न की मार्केटिंग, उत्पादन और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समिति बनाने को कहा। इसके साथ ही अस्पताल में बेहतर प्रबंधन के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित करने निर्देश दिए। उन्होंने मां योजना तथा आरजीएचएस पोर्टल को इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एकीकृत करने को भी कहा। बैठक में वन विभाग में विभिन्न कार्मिकों, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर जल्द ही भर्ती करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाने का फैसला किया गया। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ।
मुख्यमंत्री ने कल ही राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इनमें पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, वस्त्र तथा परिधान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए एमओयू शामिल रहे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि उभरते सैन्य हालात पर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का मजबूत रुख है कि वह परमाणु ब्लैकमेल आगे नहीं झुकेगा और ना ही इसका हवाला देकर सीमा पार आतंकवाद को संचालित होने देगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति बी आर गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए प्रभावी रणनीतियों पर बल दिया है। उन्होंने तपेदिक की शीघ्र पहचान और सफल उपचार की दिशा में पिछले वर्ष हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिक संक्रमण वाले जिलों में हाल में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। अभियान के दौरान संक्रमण की आशंका वाले लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई। इनमें 7,19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 2,85,000 लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। 1,00,000 से अधिक नए निक्षय मित्र इस अभियान में शामिल हुए। ये जन भागीदारी का उत्कृष्ट प्रमाण है। राज्य में मेजर मिनरल के 22 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खान और भू विज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि नीलामी के लिए 21 मई तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। 22 ब्लॉकों में से 14 माइनिंग लीज और 8 कंपोजिट लाइसेंस ब्लॉकों की नीलामी के लिए 16 अप्रैल को निविदा सूचना जारी की गई थी। वहीं वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की ओर से जब्त की गई परचून सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 21 मई को होगी। ये नीलामी पहले आज यानी 14 मई को होनी थी। हरियालो राजस्थान की थीम पर भरतपुर को हरा भरा बनाने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग की टीम ने 3 नर्सरियों में करीब 22,70,000 पौधे तैयार किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौधे आगामी मानसून सीजन में आमजन के लिए उपलब्ध होंगे।
वन विभाग की टीम ने 3 नर्सरियों में करीब 22,70,000 पौधे तैयार किए हैं, जिन्हें भरतपुर व डीग जिले में वितरित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण में सुधार हो सके। मानसून सीजन में कदम के पौधों का वितरण प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके अलावा नीम, शीशम, जामुन, इमली, खिजड़ी, अशोक सरीखी सहित ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी वितरित किए जाएंगे। बाजार की कीमत से 25% सस्ते में इन पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बरसात हुई, साथ ही कहीं कहीं ओले भी गिरे। राजधानी जयपुर सहित करीब 9 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जयपुर में कई स्थानों और भीलवाड़ा तथा सीकर में चने के आकार के ओले गिरे। वहीं पश्चिमी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। 43 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कल से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गजट अधिसूचना के जरिए इसे अधिसूचित कर दिया गया है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगले दशक में धनतेरस 15 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच अलग अलग तिथियों पर पड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस के आयोजनों में परेशानी आएगी। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षण संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से नई तिथि अपनाने और हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस आयोजनों में सक्रियता से भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। इसके लिए 23 मई तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति B.R. गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्य में मेजर मिनरल के 22 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बरसात हुई, कहीं कहीं ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।